بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آل عمران کی 60ویں سے لے کر 63ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ فمن حاجك فيه من بعد ما
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہے پیغمبر، ستیہ وہی ہے جو آپ کے پالنہار کی اور سے ہے، اتا سندیہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ تو ہے پیغمبر، جو کوئی بھی ایشوریہ سندیش وحی دوارا آپ کے پاس آنے والے گیان کے پشچات آپ سے عیسیٰ مسیح کے بارے میں بحث اور وواد کرے، تو اسے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے پتروں کو لائیں اور تم اپنے پتروں کو، ہم اپنی استریوں کو لائیں اور تم اپنی استریوں کو لاؤ، ہم اپنے آتمیے لوگوں کو اور تم اپنے آتمیے لوگوں کو لاؤ، تو پھر ہم ایشور کے سمکش پرارتھنا کریں اور ایک دوسرے کو ابھیشاپ دیں، تتھا جھوٹ بولنے والوں کے لیے ایشوریہ لعنت ارتھات ابھیشاپ نردھارت کریں۔ निसंदेह ईसा मसीह के जीवन की सच्ची कहानी यही है और ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है और निसंदेह ईश्वर प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। फिर यदि वे लोग सत्य की ओर से मुंह मोड़ लें तो जान लो कि ईश्वर बुरे कर्म करने वालों को भली भांति जानने वाला है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, सभा में आप सभी का स्वागत है। आज गुरुवार है, मार्च की 14, रमजान की 3 और इस्फंद माह की 24 तारीख। कार्यक्रम में हम विगत की भांति पहले आपको विश्व समाचार सुनवाएंगे। विश्व समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा। उसके उपरांत आप रमजान के संबंध में विशेष कार्यक्रम सुनेंगे। सभा के अंत में हम कार्यक्रम साप्ताहिक पेश करेंगे, आज की बात। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारे इन कार्यक्रमों पर यदि आप अपनी प्रतिक्रियाएं भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, hindi@wsirib.ir। दोस्तों, इन कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, parstoday.ir/hi। और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति ने ईरानी राष्ट्र का विज्ञान के मार्ग पर बढ़ने का आह्वान किया है। ईरान का कहना है कि वो पूरे विश्व के अत्याचार ग्रस्तों का समर्थन करता है। हिजबुल्ला आंदोलन ने इसराइली सेना की कई साइटों को नष्ट कर दिया। अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रईसी ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अधिक विकास पर बल दिया है। सैयद इब्राहिम रईसी कहते हैं कि शत्रु इस्लामी गणतंत्र ईरान को विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में पिछड़ा रखना चाहता है। बुधवार को ईरान के मेधावियों और बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रईसी ने कहा था कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में विकास मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि समस्याओं का मुकाबला करते समय आसानी से हमें मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपने संघर्ष को जारी रखना चाहिए। उनका कहना था कि कड़े संघर्ष के साथ अपने समाज में मेधावियों और बुद्धियों को आशा का दीप जलाना चाहिए तथा निराशा को शत्रुओं के लिए रखना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान और तकनीक के मार्ग पर हमको पूरी दृढ़ता के साथ आगे की ओर बढ़ना चाहिए। उनका कहना था कि आज की दुनिया में इरादों की लड़ाई है। दुश्मन नहीं चाहते हैं कि ईरान विकास और प्रगति करे, लेकिन ईरानी लोग मजबूत इरादों के साथ अपने मार्ग पर डटे हुए हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान के रक्षा मंत्री ने बताया है कि देश अब ड्रोन के इंजन बनाने में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा आश्तियानी ने यूएवी इंजन बनाने में ईरान के आत्मनिर्भर होने की सूचना दी है। उन्होंने बताया है कि ईरान के सैन्य उपकरणों के निर्यात में 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है। उनका ये भी कहना था कि अन्य देशों के साथ रक्षा के क्षेत्र में सहयोग में विस्तार हो रहा है। इसी संदर्भ में कॉकेशिया, आर्मेनिया और कतर के साथ वार्ता का क्रम जारी है। महिलाओं और परिवारों के मामले में राष्ट्रपति की सलाहकार कहती हैं कि ईरान की महिलाओं की प्रगति के लिए उचित परिस्थितियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनसीए खजली कहती हैं कि पीड़ितों, अत्याचारग्रस्तों और अधिकारों के लिए हम क्षमा कीजिएगा इनसीए खज अली कहती हैं कि पीड़ितों, अत्याचारग्रस्तों, महिलाओं के अधिकारों और उन सारे ही वर्गों का ईरान समर्थन करता है जो वर्तमान समय में अपने अधिकारों से वंचित है। अमरीकी पत्रिका न्यूज वीक को दिए अपने इंटरव्यू में इनसीए खज अली ने कहा है कि ईरान पीड़ितों, अत्याचारग्रस्तों, महिलाओं के अधिकारों और उन सारे ही वर्गों का समर्थन करता है जो वर्तमान समय में अपने अधिकारों से वंचित हो गए हैं। उन्होंने बताया कि ईरान में महिलाएं शिक्षा, प्रशिक्षण, तकनीक, विज्ञान, राजनीति और आर्थिक हर क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रही हैं। खजली के अनुसार अमरीका में महिलाएं सामान्यतः अधिक लाभ उठाने वाली अर्थव्यवस्था का शिकार हो रही हैं। काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान संयुक्त राष्ट्र संघ की तथा कथित तथ्यपरक टीम को मान्यता नहीं देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के मानवाधिकार आयोग के प्रमुख ने कहा है कि उनका देश उस तथा कथित तथ्यपरक समिति को मान्यता नहीं देता जिसका गठन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। गरीबाबादी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने सन 2023 में पश्चिमी देशों की अवैध मांगों का अनुसरण करते हुए मानवाधिकारों के हनन की भेंट चढ़े लोगों को अधिक दुख में डाल दिया। अब वो हस्तक्षेप के लिए राजनीतिक हथकंडे में बदल गया है। राष्ट्रसंघ में ईरान के मानवाधिकार आयोग के प्रमुख ने कहा है कि तेहरान इस बात की पुष्टि करेगा कि राजनीति से प्रेरित काम किसी विषय की वास्तविकता को बदल नहीं पाता है। हिजबुल्ला ने इसराइली सेना की कई साइटों को नष्ट किया है। गजा युद्ध में फिलिस्तीनियों के समर्थन और लेबनान में इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्ला ने लेबनान की सीमा के पास कई इसराइली लक्ष्यों को निशाना बनाया। हिजबुल्ला ने इसराइली लक्ष्यों पर किए गए मिसाइल हमलों के वीडियो भी जारी किए हैं। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि मिसाइल इसराइली सैन्य ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। बुधवार को हिजबुल्ला के तोपखाने ने हनीता के पूर्व में दुश्मन जायोनी सैनिकों की एक बैठक को निशाना बनाया। हमले के बाद इस साइट से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। बुधवार की ही शाम हिजबुल्ला के लड़ाकों ने अवैध कब्जे वाले लेबनानी शबा फार्म्स में इसराइली सेना की बैरक को फलक मिसाइल से निशाना बनाया जो सीधा लक्ष्य पर जाकर लगा। हिजबुल्ला के नेता सैयद हसन नसरुल्ला का कहना है कि गजा युद्ध में जायोनी सेना का हाल बेहाल हो चुका है। बुधवार को हसन नसरुल्ला ने टीवी पर अपने संबोधन में कहा कि हर मोर्चे पर इसराइली सेना की हालत बहुत खस्ता हो गई है। दुश्मन के विशेषज्ञों ने रणनीतिक हार को स्वीकार करने पर ही जोर दिया है। हालांकि जायोनी सेना ने गजा में बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया है और पूरे इलाके को उन्होंने वीरान कर दिया है। हिजबुल्ला प्रमुख ने अपने भाषण में कहा है कि गजा में जो प्रतिरोध और संघर्ष कर रहा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, जहां से दुनिया आश्चर्यचकित करने वाले दृश्यों को देख रही है। ये कुरान की संस्कृति है और यह पूरी दुनिया के लिए एक दिव्य प्रमाण है। लेबनान के दक्षिणी शहर तायर में एक कार पर इसराइली ड्रोन हमले में हमास के नेता हादी अली मोहम्मद मुस्तफा शहीद हो गए। लेबनान में हमास की शाखा का कहना है कि इसराइली ड्रोन हमले में उनके एक सदस्य और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई है। लेबनान के मीडिया का कहना है कि हमले के दौरान कार के निकट से गुजरने वाले एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की भी मौत हो गई। जायोनी सेना ने इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। ट्रंप ने जेल में बंद अमरीकी संसद पर हमला करने वालों को बंधक बताया है। अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में यदि वे जीत जाते हैं तो देश की संसद पर हमले के आरोपी सभी लोगों को आजाद करवा देंगे। ट्रंप ने संसद पर हमले के आरोपियों को अपना समर्थक बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी संसद पर हमले की घटना को सामान्य घटना बताया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान राष्ट्रपति नालायक हैं जिन्होंने निर्दोषों को जेल में भर रखा है। सन 2021 में राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन ने ट्रंप को पराजित किया था, जिसके बाद ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इसके बाद अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति के हजारों समर्थकों ने अमरीकी संसद पर धावा बोल दिया था। इस हमले में 1658 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। ट्रंप का मानना है कि ये लोग आरोपी नहीं बल्कि बंधक हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 38 महीनों में मेरे 1358 समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मैं बाइडेन से कहता हूं कि इनको वो यथाशीघ्र आजाद करवा दें। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून सहित किसानों की मांगों को लेकर गुरुवार को हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में जुट गए। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये कदम उठाया है। पीटीआई के अनुसार किसान मजदूर महापंचायत नाम के इस सम्मेलन में किसानों ने कृषि से संबंधित केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए सरकार के विरोध में नारे लगाए। संयुक्त किसान मोर्चा 37 कृषि संघों का एक समूह है, जिसने 22 फरवरी को चंडीगढ़ में एक बैठक में दिल्ली में महापंचायत का आह्वान किया था। तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के हुए प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले मोर्चे का कहना है कि किसान मजदूर महापंचायत लड़ाई तेज करने का प्रस्ताव पारित कर रही है। इसी के साथ विश्व समाचार समाप्त हुए।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, मैं हूं अहमद अब्बास, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे हिजबुल्ला लेबनान के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह के महत्वपूर्ण बयान की। राजनीतिक चर्चा में हम एक नज़र डालेंगे रूस में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव की ताज़ा परिस्थितियों पर। भारत की राजधानी नई दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया, इस विषय पर भी एक रिपोर्ट हम आपको सुनाएंगे। तो चर्चा के विषय यही है। आरंभ करते हैं सैयद हसन नसरुल्लाह के महत्वपूर्ण भाषण से। हिजबुल्ला लेबनान के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने भाषण में कहा कि ज़ायोनी सेना बदहाल और बेहाल हो चुकी है। जायजा पेश कर रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्ला के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना है कि गजा युद्ध में ज़ायोनी सेना बेहाल हो चुकी है। बुधवार को सैयद हसन नसरुल्लाह ने टीवी पर अपने संबोधन में कहा कि हर मोर्चे पर इसराइली सेना की हालत बहुत बेहाल हो चुकी है। दुश्मन के विशेषज्ञों ने रणनीतिक हार को स्वीकार करने पर जोर दिया है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को अवैध अधिकृत फिलिस्तीन इलाके में हमास के अलक्सा ऑपरेशन के आरंभ के बाद से इसराइल ने गजा के खिलाफ व्यापक युद्ध छेड़ दिया था, लेकिन 5 महीने का समय बीत जाने के बाद भी हमास को नष्ट करने सहित अपने किसी भी घोषित लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका है। हालांकि ज़ायोनी सेना ने गजा में बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया है और पूरे इलाके को वीरान कर दिया है। हिजबुल्लाह के महासचिव ने अपने भाषण में कहा कि गजा जो प्रतिरोध और संघर्ष कर रहा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है और वहां से दुनिया आश्चर्यचकित करने वाले दृश्य देख रही है। ये कुरान की संस्कृति है और ये पूरी दुनिया के लिए एक स्पष्ट प्रमाण है। सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना था कि इसराइली सेना को उससे कहीं अधिक नुकसान पहुंचा है जिसका उसने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम अपने शहीदों की घोषणा लाइव ब्रॉडकास्ट में करते हैं जबकि दुश्मन अपने मृतकों की संख्या को छिपाता है जिसका जानवी सेना पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तरी मोर्चे पर इसराइल ने अपने जानी और माली नुकसान पर भारी पर्दा डाल रखा है। सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना था कि 5 महीने के युद्ध के बाद इसराइली सेना के पास सैनिकों की कमी है और वो 14,500 अधिकारियों और सैनिकों की भर्ती करना चाहती है। यहाँ तक कि वो अपने अति रूढ़िवादी यहूदियों को प्राप्त सेना में भर्ती की छूट को भी समाप्त करना चाहती है। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि कौन यकीन करेगा कि जो बाइडेन गजा युद्ध को बंद नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा कि बाइडेन 1 सेकंड से कम की अवधि में गजा युद्ध और जानी सरकार के अपराधों को बंद करवा सकते हैं। हिजबुल्लाह के महासचिव ने अमेरिकी सरकार को मूर्ख सरकार की संज्ञा दी और कहा कि बेहतर है कि वॉशिंगटन गजा युद्ध को बंद कराए। उन्होंने कहा कि गजा युद्ध को बंद कराने की शर्त बुद्धिमत्ता, मानव प्रेम, धार्मिक और तार्किक है। उन्होंने कहा कि आज फिलिस्तीन के समस्त गुट और गजावासी जानी सरकार के अतिक्रमणों व अपराधों के बंद किए जाने के इच्छुक हैं और ये बंद अस्थायी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि मामला केवल बंदियों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है बल्कि जानी सरकार का अतिक्रमण पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए और इस पर सबको ध्यान देना चाहिए और हम बल देकर कहते हैं कि हम समस्त फिलिस्तीनी गुटों और हमास के नेताओं के साथ हैं और इस गुट की कानूनी शर्तों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ गजा में हो रहा है वो पूरे विश्ववासियों के लिए सीख है और अलक्सा तूफान की बड़ी उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये 6ठा महीना है जब नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगर रफा पर हमला नहीं करेंगे तो युद्ध हाथ से चला जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं नेतन्याहू से कहता हूं कि अगर रफा पर हमला किया तो जंग हार जाओगे और न हमास को खत्म कर सकते हो और न ही प्रतिरोध को। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि जानी दुश्मन की हार की एक अलामत यह है कि वे गजा युद्ध के 6ठे महीने में हमास से बात कर रही हैं।
रूस में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आगामी 15 मार्च से 3 दिन तक मतदान होगा। जायजा पेश कर रहे हैं सैयद मीसम।
रूसी राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रव्यापी मतदान शुक्रवार 15 मार्च 2024 को शुरू होगा और 3 दिनों तक जारी रहेगा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मतदान पहले ही शुरू हो चुका है जिसमें विशेष परिस्थितियों वाले दूरदराज के क्षेत्र भी शामिल हैं। रूस के 114 मिलियन से अधिक लोग इस चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं। इस देश के आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए व्लादिमीर पुतिन, निकोलाई खारितोनोव, व्लादिस्लाव दावानकोव और लियोनिद इस्टलस्की उम्मीदवार हैं। अगर कोई भी उम्मीदवार आधे से अधिक वोट जीतने में कामयाब नहीं होता है तो प्राथमिक चुनाव के 21 दिन बाद फिर से चुनाव होगा जिसमें सबसे अधिक वोट पाने वाले 2 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन के 3 प्रतिद्वंदियों का रूसी समाज में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है और उनके इस चुनाव में जीतने की ज्यादा संभावना भी नहीं है। रशियन पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटर के पोल के नतीजे बताते हैं कि व्लादिमीर पुतिन 2024 का राष्ट्रपति चुनाव 82% वोटों के साथ जीतेंगे और रूसियों का मतदान प्रतिशत 71 होगा। रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि निकोलाई खारितोनोव ने अपने चुनाव अभियान में ग्रामीणों, पेंशनभोगियों और वामपंथी समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारों के समर्थकों को संबोधित किया है। لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے لیونید اسٹالسکی نے چھوٹے شہروں اور گاؤں کے نواسیوں کو سمبودھت کیا اور نیو پیپلز پارٹی کے امیدوار ولادیسلاؤ داوانکوو نے چناؤ پرچار میں مکھیہ روپ سے یوواؤں، ادھمیوں اور بڑے شہروں کے نواسیوں کو پربھاوت کرنے کا پریاس کیا ہے۔ جنمت سرویکشن کے انوسار ورتمان روسی راشٹرپتی ولادیمیر پوتین کے راشٹرپتی چناؤ جیتنے کی ادھک سمبھاونا ہے۔ ماسکو وشودھالیہ کے پروفیسر پاول ڈینیلین کا ماننا ہے کہ ولادیمیر پوتین کے وپریت اس دیش کے راشٹرپتی چناؤ میں انیہ تین امیدواروں کا درشٹی کون لوک لبھاون ہے اور ان کے پاس متداؤں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مارچ 2024 کی شروعات میں روس میں ہوئے تازہ سروے کے نتیجوں کے مطابق اس دیش کے 83% لوگ ولادیمیر پوتین کے کاریوں کا سکاراتمک مولیانکن کرتے ہیں اور ان سے سنتشت ہیں۔ کیول 7% پرتیبھاگیوں نے پوتین کے کاریوں کو اپیکشاکرت کمزور مانا اور ان میں سے 9% روسی راشٹرپتی اور ان کے دوارا لیے گئے نرنوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ولادیمیر پوتین کے 2024 کے روسی راشٹرپتی چناؤ میں بھاگ لینے کے فیصلے اور روسی سماج میں ان کی اچھ استھتی کے کارن پرتدندوی امیدواروں کی اپستھتی کیول ایک لوک تانترک چناؤ شو کے روپ میں رہ گئی ہے۔ حالانکہ تینوں امیدواروں میں سے پرتیک کو روسی سماج کے ایک حصے کا پرتندھی مانا جا رہا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ کاریکرم راجنیتک چرچا۔
بھارت کی راجدھانی نئی دلی کے رام لیلا میدان میں کسان سنگٹھنوں نے ایک بڑا پردرشن کیا اور اپنی مانگیں رکھیں۔ بیورے کے ساتھ ہمارے سنواد داتا شمشاد کاظمی۔
دلی کے ایتیہاسک رام لیلا میدان میں کسانوں کے وبھن سنگٹھنوں نے اپنی مانگوں کو لے کر ایک بڑی ریلی کی، جسے کسان مزدور مہا پنچایت کا نام دیا گیا تھا۔ کئی پرتبندھوں کے ساتھ دلی میں آیوجت کسانوں کی اس ریلی میں سنیوکت کسان مورچہ اور بھارتی کسان یونین سہت پورے بھارت سے کسانوں کے وبھن سنگھنوں کے نیتاؤں اور عام کسانوں نے بھاگ لیا۔ اس مہا پنچایت کو سمبودھت کرتے ہوئے کسان نیتاؤں نے کیندر سرکار سے سبھی فصلوں کی خریداری کے لیے ایم ایس پی قانون بنانے اور سوامی ناتھن آیوگ کی سفارشوں کو لاگو کرنے سہت اپنی سبھی مانگوں کو سویکار کرنے کی مانگ کی۔ کسانوں نے سرکار کو سچیت کیا کہ یدی ان کی مانگیں پوری نہیں ہوئی تو آگامی لوک سبھا چناؤ میں اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ کسان اپنی مانگوں کو لے کر پچھلے ایک مہینے سے دلی کوچ کرنے کے پریاس میں رہے ہیں، لیکن انہیں دلی میں پرویش کی انومتی نہیں دی گئی تھی، جس کے بعد کسان پچھلے ایک مہینے سے پنجاب اور ہریانہ کی سیماؤں پر دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ کسانوں کے اس مہا پنچایت کو بھارت کے 10 بڑے مزدور سنگھوں نے بھی سمرتھن دیا۔ پردرشنکاریوں نے دیش میں بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کو لے کر مودی سرکار کی آلوچنا کی اور کسانوں کی دینیہ استھتی پر دھیان دینے کی مانگ کی۔ دیش اور دنیا میں اناج پیدا کر کے لوگوں کا پیٹ بھرنے والے کسانوں نے کہا کہ آج کسانوں کی استھتی درباگیپورن ہے اور اپنی مانگوں کو لے کر اب تک ویرودھ پردرشنوں کے دوران لگ بھگ 750 کسان وبھن کارنوں سے ہتاہت ہو چکے ہیں اور حالات سے مجبور ہو کر آتم ہتیا کرنے والے کسانوں کی سنکھیا بھی ہزاروں میں ہے۔ کسان مزدور مہا پنچایت میں مہیلاؤں نے بھی بڑی سنکھیا میں بھاگ لیا، جو برابر کسانوں کے ساتھ رہی ہیں۔ کسانوں نے کہا کہ دیش کے چھوٹے بڑے کسانوں کی استھتی کو بہتر بنانے کے لیے سرکار سوئم کسانوں کی فصلوں کو خریدے۔ ज्ञात रहे कि वर्ष 2020 में पारित होने वाले 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर लगभग एक साल तक धरना दिया था, जिसके बाद सरकार तीनों विवादित कृषि कानून को वापस लेने पर मजबूर हो गई थी, लेकिन एमएसपी की मांग पूरी नहीं हुई थी। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों अब पेश है अगले कार्यक्रम।
ईश्वरीय आतिथ्य।
श्रोतो, रमजान से विशेष कार्यक्रम ईश्वरीय आतिथ्य लेकर आपकी सेवा में हाजिर हैं। मोहम्मद मेहंदी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओ, सबसे पहले आज की दुआ और उसका अनुवाद सुनिए।
اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل في بجودك يا اجود الاجودين।
हे ईश्वर, आज के दिन मुझे चेतना और जागरूकता प्रदान कर तथा अज्ञानता और व्यर्थ कामों को दूर कर दे। और हे सबसे बड़े दानी, आज के दिन तू जो भी भलाई उतारेगा मुझे भी उससे लाभान्वित कर।
रमजान की शुभकामनाएं, रमजान के महीने की शुभकामनाएं, जो ईश्वर की कृपा, आशीर्वाद, दया और क्षमा का महीना है। रमजान का पवित्र महीना सुनहरे और असाधारण अवसरों का महीना है। यह सुबह और शाम इबादत करने का अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह आत्मा को पवित्र बनाने और कुरान की आयतों से परिचित होने का अवसर है। रमजान व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने का एक वास्तविक अवसर है। हम मोहम्मद और उसके पवित्र परिवार पर सलाम भेजते हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं कि वह हमें और अधिक कर्तव्यों को जानने और उन्हें पूरा करने में सफलता प्रदान करे।
हम जिस दुनिया में रहते हैं उसकी खूबसूरती में से एक हमारे स्वभाव में अंतर है। जीवन का सौंदर्य इसी अंतर का परिणाम है। अलग अलग और विपरीत रंगों को मिलाकर एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई जाती है। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की व्याख्या के अनुसार हर इंसान के विचारों, भावनाओं और स्वाद में एक विशाल दुनिया है। लेकिन यहाँ ये मुद्दा है कि ये मतभेद लोगों को एक दूसरे से दूर करने या एक दूसरे के प्रति शत्रुता और नफरत का कारण नहीं बनना चाहिए।
मानव समाज में सबसे खराब प्रकार का मतभेद धार्मिकता के मार्ग पर उत्पन्न होता है। हालांकि समाज विकास और पूर्णता की ओर कदम बढ़ाकर देवीय आदर्शों की ओर बढ़ना चाहता है, ताकि न्याय और आध्यात्मिकता का प्रसार हो और आदर्श देश का निर्माण हो। कल्पना कीजिए कि एक दिन सभी ईसाई, यहूदी और मुसलमान एकजुट हो जाएं और उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हो। इसके बाद भी क्या दुनिया में अत्याचार बाकी रह जाएगा? कुरान के सूरे आले इमरान की 64वीं आयत में ईश्वर लोगों को एक शब्द के तहत एकजुट होने के लिए आमंत्रित करता है और कहता है, कहो हे किताब के मानने वालों, हमारे और तुम्हारे बीच एक महान शब्द है। आओ हम उस सत्य की बात पर चलें जो हमारे और तुम्हारे बीच एक समान है, और वह यह कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते और उसके साथ किसी को साझीदार नहीं बनाते।
रमजान का पवित्र महीना आत्मनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और इसकी शुरुआत आत्मज्ञान से होती है। پہلے انسان خود کو اچھی طرح سے پہچان لیتا کہ خود میں سدھار کر سکے اور اپنا آتم نرمان کر سکے، کیونکہ آتم گیان سے ہی ایشور کی پہچان ہوتی ہے۔ جو کوئی ایشور کو پہچان لیتا ہے وہ اس کی اور بڑھتا ہے اور اس کا آچرن اور ویوہار ایشور کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ ایشور بھی اسے آدھیاتمک واستوکتاؤں کو سمجھنے کا اوسر پردان کرتا ہے۔ اس کی مثال اس چالک کی ہے جو سڑک پر جتنا آگے بڑھتا ہے نئے درشیہ اس کے سامنے آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بندہ جتنا ایشور کی اور بڑھتا ہے اس کے سامنے ادھک رہسیوں سے پردہ اٹھتا ہے اور اتنا ہی ایشور پر اس کا وشواس مضبوط ہوتا ہے۔
آتم نرمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر وشیش دھیان دے اور بھوتکتا پر دھیان کم دے اور اپنی آتما کا نیتک گنوں کی اور مارگ درشن کرے۔ اس لیے پوتر رمضان انسان کے لیے اپنی حقیقت کی اور پلٹنے اور اپنی مانویہ استھتی اور سار کو سمجھنے کا ایک افسر ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک شن کے لیے بھی ایشور کی یاد سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے خدا کے ایک بندے سے کہا، ہے شیخ، پھلا ویکتی پانی پر چلتا ہے اور ڈوبتا بھی نہیں ہے۔ شیخ نے کہا، بہت آسان کام ہے کیونکہ مینڈک بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، ہم ایک ایسے ویکتی کو جانتے ہیں جو ہوا میں اڑتا ہے۔ شیخ نے جواب دیا، یہ بھی ایک آسان کام ہے کیونکہ مکھی اور مچھر بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ کسی نے کہا، ہے شیخ، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو پلک جھپکتے ہی ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے۔ شیخ مسکرائے اور کہا، یہ کام دوسرے کاموں سے آسان ہے کیونکہ شیطان بھی پلک جھپکتے ہی پورب سے پشچم کی اور چلا جاتا ہے۔ ایسے کاموں کا کوئی مہتو نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ نے کھڑے ہو کر کہا، آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں کے بیچ اٹھتا بیٹھتا ہے اور کھاتا پیتا ہے، بازار میں اپنے ساتھیوں کے بیچ ویاپار کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ جیون ویتیت کرتا ہے اور ایک پل کے لیے بھی ایشور کو نہیں بھولتا۔
روزہ ان لوگوں پر واجب ہے جن میں روزہ رکھنے کی شرط پائی جاتی ہے، جو اس پرکار ہے، بالغ ہونا، سمجھدار ہونا، اس لیے کہ دیوانہ انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنے کی طاقت کا ہونا، کیونکہ مریض اور بوڑھے کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ہوش میں ہونا، سفر میں نہیں ہونا، مہاماری کا نہیں آنا، سواستھ کے لیے روزے کا ہانیکارک نہیں ہونا اور سامانیہ سے ادھک کٹنائی کا کارن نہیں بننا۔ اس بیچ روزہ واجب ہونے کی شرطوں کے بیچ کچھ بندوؤں پر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ کمزوری کی وجہ سے انسان روزہ نہیں چھوڑ سکتا، ہاں اگر اتنی کمزوری ہے کہ جو آسانی ہے تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اسے اگر نقصان پہنچنے کا ڈر ہو، اس لیے جن لڑکیوں کے ویسک ہونے کی عمر ہو جاتی ہے ارتھات اسلامی کیلنڈر کے انوسار 9 سال، تو ان پر روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے اور کٹنائی یا شاریرک کمزوری کے کارن اس کا چھوڑنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر ہانیکارک ہو اور بھوک و پیاس کا سہن کرنا بہت مشکل ہو تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔
افطار کے وقت دعا پڑھنے کا کافی مہتو ہے۔ افطار کا سمے دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے بہترین سمے ہے۔ حضرت علی افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے کہ ہے ایشور، ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، ہماری اس عبادت کو سویکار کر، نیسندے تو جانی اور سننے والا ہے۔ افطار کے وقت سورہ قدر کی تلاوت کی سفارش بھی کی گئی۔ افطار کے وقت دان کرنا، چاہے کچھ کھجورے یا شربت ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر اسلام کی سیرت ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے میں جو کوئی کسی دوسرے کو کھانا کھلائے گا، ایشور اسے 30 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا اور اس کی ایک دعا سویکار کرے گا۔
ایک دن پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا،
ابو الحسن، رمضان کا مہینہ نکٹ ہے، افطار سے پہلے دعا کرنا۔ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ ہے محمد، جو کوئی رمضان کے مہینے میں افطار سے پہلے رمضان کی وشیش دعا پڑھے گا، ایشور اس کی دعا، نماز، روزہ اور 10 دعاؤں کو سویکار کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے دکھوں کو دور کر دے گا، اس کی کٹھنائیوں کا سمادھان کر دے گا، اس کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا، اسے کے لکش تک پہنچا دے گا، اس کے کاریوں کو اپنے دوتوں کے کاریوں کے سمان کر دے گا۔ پلے کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا ہوگا۔
اس دعا کا انواد یہ ہے: ہے ایشور، ہے اچھ پرکاش کے پالنہار، ہے اچھ استھان کے پالنہار، اور ہے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمدر، مہان شما یاچنا اور اجے پرکاش کے مالک، ہے تورا، بائبل، زبور اور فرقان کے پالنہار، آسمانوں میں ہر چیز کا تو ہی مالک ہے اور تو ہی زمین کی ہر چیز کا سوامی ہے، اور تیرے علاوہ پرتھوی اور آکاش میں کوئی ایشور نہیں ہے۔ جو کچھ بھی زمین آسمان میں ہے تیرا اس پر ورچسو ہے، یہاں تیرے سوا کوئی دوسرا سوامی نہیں ہے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے تو اس کا مالک اور شاسک ہے، اور تیرے علاوہ ان میں کوئی سوامی اور شاسک نہیں ہے۔ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے مہان نام کا واسطہ دے کر، تیرے پرکاش کا واسطہ دے کر، کہ جس سے ہر چیز اجول ہے، اور تیری بادشاہت کے واسطے کی جو پراچین ہے، ہے وہ کی جو زندہ ہے اور ہر چیز کا جیون اس کے سہارے ہے۔ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے اس نام کے واسطے کہ جس کے دوارا ہر چیز چمکتی ہے، اور اس نام کے واسطے جس نے آسمان اور زمین کو پرکاش میں بنا دیا، اور اس نام کے واسطے کہ جس کے دوارا اتیت اور بھوشیہ کے لوگوں کا سدھار ہوا اور وے یوگی بنے۔
ہے او جو سمست جیوتوں سے پہلے جیوت تھا اور سمست جیوتوں کے بعد بھی زندہ رہے گا، اور ہے ایسے زندہ کہ جو تیرے علاوہ کوئی پالنہار نہیں ہے۔ محمد اور ان کے پریجنوں کا گڑگان ہو، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے معاملوں میں میرے لیے آسانی کر دے، اور مجھے محمد اور ان کے پریجنوں کے دھرم، مارگ درشن اور پرمپرا پر استھر رکھ، ان پر خدا کا سلام ہو، مجھے استھر رکھ اور میرے کاریوں کو سویکار کر۔ جو کچھ تو نے اپنے خاص بندوں کو پردان کیا ہے مجھے بھی پردان کر، اس لیے کہ میں تجھ پر وشواس رکھتا ہوں اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، اور میں تیرے سامنے گڑ گیا رہا ہوں جبکہ میرا بھاگیہ تیرے ہاتھوں میں ہے، اور میں تیرے پاس آ رہا ہوں۔ میرے اور میرے پریوار اور بچوں کے لیے بھلائی ایکترت کر اور برائیوں کو دور کر دے۔ تو ہی سب سے دیالو ہے جس نے بنا کسی نمونے کے آکاش اور پرتھوی کی رچنا کی، اور جسے چاہتا ہے اسے بھلائی پردان کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دور کرتا ہے۔ اس لیے مجھ پر دیا کر، مجھ پر دیا کر، تیری بھلائی اور دیا کی آشا کے ساتھ، ہے سب سے بڑے دیالو۔
تو اسی کے ساتھ آج کا کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انمتی دیجیے۔
آج کی بات،
دوستو کاریکرم آج کی بات لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں۔ आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस को दोबारा वापस ला सकते हैं। अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। जैसे जैसे चुनाव निकट आ रहे हैं, वैसे वैसे भारत में चुनावी पारा तेज होता जा रहा है। कांग्रेस जो अभी तक पूरी तरह से चुनावी मैदान से साफ नजर आ रही थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने की अटकलों के बीच मुकाबला जबरदस्त होता नजर आ रहा है। चर्चा ये है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। दोनों ही सीटें गांधी परिवार की पारंपरिक सीटें हैं, इसीलिए वे इस जगह से चुनावी जंग का आगाज कर सकती हैं। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर ऐसा होता है तो क्या ये दोनों चुनाव जीतने की पोजीशन में हैं? क्या ये दोनों नेता अपनी अपनी सीटें निकाल पाएंगे? क्योंकि बावजूद इसके कि राहुल गांधी का कद बड़ा है और स्मृति ईरानी की लोकप्रियता घटी है, अमेठी राहुल गांधी के लिए आसान सफर नहीं होगा। नरेंद्र मोदी अपनी खासम खास मंत्री को जिताने में जी जान लगा देंगे। वे रायबरेली सीट भी छीनने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की सारी सीटों को जीतने का लक्ष्य बनाया है। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि इन दोनों के इन सीटों पर चुनाव लड़ने की अटकलों में कितना दम है? विचार सुनिए टीकाकार शीतल पी सिंह।
वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग और उनकी पार्टी के लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। जैसे उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले कहा था, अभी जिलाध्यक्ष ने कहा है, तो इस तरह के बयान आ रहे हैं। वो यहाँ से यात्रा भी अपनी लेके गए, इससे ये समझ में आता है कि उनके मन में कुछ तो है, लेकिन अभी जब तक चीजें स्पष्ट नहीं होती तो ये शंका में तो है ही है। जहां तक पिछले चुनाव की स्थिति है, रायबरेली तो फिर भी अच्छा था, करीब 56% वोट सोनिया गांधी जी को मिला था और वो करीब 1.5 लाख से जीत गई थी। लेकिन अमेठी में राहुल गांधी करीब 5-6% वोट कम पाकर हार गए थे, 50-60 हजार से करीब हार गए थे। अभी की स्थिति यह है कि रायबरेली और अमेठी दोनों की लोकसभा क्षेत्र में 5-5-10 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से कोई कांग्रेस का एमएलए नहीं। उसमें समाजवादी पार्टी के 6 एमएलए थे। संयोग देखिए कि अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उन 6 में से 3 ने पार्टी से बगावत कर दी और वो चले गए, आप कह सकते हैं बीजेपी के साथ, आधे मन से या अधूरे मन से। तो 3 अभी विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी लगभग सभी सीटों पे रनर अप रही या जीती, तो इस तरह से उसकी उपस्थिति हर जगह है। बहुजन समाज पार्टी के पास भी वहां हर जगह वोट है। यहाँ के चुनाव में ऐसा होता रहा है कि समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं देती, न अमेठी में न रायबरेली में, ये 2 सीटें वो हमेशा छोड़ देती थी इन लोगों के, ज्यादातर बार उसने छोड़ा हुआ, और बीएसपी उम्मीदवार दे देती थी, तो बीएसपी के लिए कुछ वोट वहां था। अब नई परिस्थिति में क्या अलायंस होता है, समाजवादी पार्टी से तो अलायंस है, वो स्थिति बनी हुई है, लेकिन बीएसपी से कोई अलायंस होता है कि नहीं होता है, ये भी भविष्य के गर्भ में है। अभी तक तो इसके बारे में अटकलबाजी ही है। तो जो अभी वर्तमान परिस्थिति है उसके अनुसार ये आप कह सकते हैं कि ये अभी कोई इन इस परिवार का इस इलाके में, खासकर इन दोनों लोकसभा सीटों पर, एक इनके बारे में एक अच्छी धारणा है जनता में, बड़ी बड़ी बहुसंख्यक जनता में, ये सही है।
वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस का कहना है कि मुझे लगता है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है और वहां लोकसभा और विधानसभा तथा पंचायत चुनाव में मतदान अलग ही पैटर्न में होता है।
भावनात्मक लगाव भी है गांधी परिवार के प्रति, और रायबरेली में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय, मैं तब से बात कर रहा हूँ, अशोक सिंह वहां चुनाव लड़े थे और उसके बाद और कई एक प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ते रहे, आज तक रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी समय से वहां पर उधार का ही प्रत्याशी उनके पास मिलता रहा। एक कोई ढंग का उनका अपना नेता वहां पर उन्होंने इस तरह का नहीं खड़ा किया कि जिसको वो ये कह सकें कि साहब ये हमारी पार्टी के हैं। बाहर से प्रत्याशी आते हैं, समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनके गए हैं, वो तकनीकी रूप से तो नहीं गए हैं लेकिन वो उनकी तरफ गए हैं। कहा जा रहा है कि उनको लोकसभा के चुनाव में उनको मैदान में उतारा जाएगा, या इससे पहले जो दिनेश सिंह जो पिछली बार लड़े थे वहां पर, दोनों के साथ दोनों भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, उनको लाया गया था चुनाव लड़ाने के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ। शायद अमेठी की बात यह सच है कि पिछला चुनाव राहुल गांधी कुछ वोटों से वहां हारे थे, और उसके पीछे जो प्रबंधन की गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं, बातें आज यहाँ कहने लायक नहीं है। क्या प्रबंधन की गड़बड़ियां हुई वो भी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर जिम्मेदार थी। दूसरा ये था कि स्मृति ईरानी ने चुनाव हारने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ा था, लगातार वहां डटी रही थी और काम करती रही थी। उसके उलट राहुल गांधी के इतने बरस काम करने पर भी उनके जो मैनेजर्स थे उनको लेकर भी एक नाराजगी थी, उनके मैनेजर जिस तरीके से मैनेज कर रहे थे उसको लेकर भी नाराजगी थी। ये सब कुछ वजह है। इस बार की स्थिति में थोड़ा फर्क है। फर्क ये है कि अमेठी के कई गांवों में मैंने जाकर देखा और किसी चुनाव या किसी कवरेज के सिलसिले में नहीं बल्कि पारिवारिक गैदरिंग के दौरान रात में भी रुकना हुआ, मिलना जुलना बहुत सारे लोगों से होता रहा। एक वो जो साधन संपन्न तबका जिसकी बात कर रहे हैं जिसको इन्फ्लुएंसर भी कह सकते हैं, एक उसके अंदर अमेठी की आभा छिन जाने का भी एक मलाल है ये मुझे महसूस हुआ कि वे अमेठी को देश भर में लोग जानते थे जबकि अमेठी कोई ऐसी बड़ी महान जगह नहीं है, ना उसका कोई ऐसा बड़ा इतिहास, कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है, लेकिन लोगों को लगता था कि तब अमेठी को पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ अमेठी का नाम लो, अमेठी को हर कोई जानता था। वो एक पहचान नहीं रही है एक बात। दूसरा, स्मृति ईरानी के कुछ कामकाज करने का जो तरीका रहा है उन तरीकों को लेकर भी वहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, उनके कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात
प्रोफेसर रविकांत का कहना है कि अगर राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दी तो भाजपा ही कहेगी कि वो हार गए और उनमें नया जज्बा है जो भाजपा के हौसले को पस्त करने के लिए काफी है।
निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल गेम है वो केवल अर्थमेटिक नहीं होता, कई बार केमिस्ट्री उसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है और कई बार वो साइकोलॉजिकल गेम भी होता है। राहुल गांधी अगर अमेठी छोड़ते हैं तो बीजेपी ये बहुत शान से कहेगी कि साहब राहुल गांधी ही डर गए, और वो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद एक नए कलेबर और एक नए तेवर के साथ यहां तक पहुंचे, और ये वो राहुल गांधी नहीं है जो 2 साल पहले थे। आज वो राहुल गांधी हैं जिनमें मैं नेहरू की समझ और अंबेडकर का तेवर देखता हूं, जो खुले तौर पर, मतलब कई बार तो मुझे लगता है कि ढेर सारे कांग्रेसियों को मुंह चढ़ाते हुए वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, दलितों आदिवासियों के आरक्षण को बढ़ाने की बात करते हैं, वो सीधे तौर पर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश तो कांशीराम साहब की जमीन रही। डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा राजनीतिक स्तर पर फलीभूत हुई है तो वो उत्तर प्रदेश। ऐसे में राहुल गांधी का अमेठी छोड़ना बीजेपी के हित में होगा और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी नहीं छोड़े, वो लड़ेंगे और पूरी हिम्मत के साथ लड़ेंगे। केवल 55,000 से स्मृति ईरानी जीते थी, मुझे भी वो चीजें मालूम है कि क्या मैनेजमेंट हुआ, किन किन लोगों को कैसे कैसे दबा करके तोड़ा गया था। अब वो चूंकि हम लोग के पास प्रमाण नहीं है तो उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि सारा साम दाम दंड भेद और इसमें और निकाल लीजिए आप, उस सारे लगाए गए थे राहुल गांधी को हराने के,
वो तो इस बार भी लगाए गए,
लेकिन इस बार वो राहुल गांधी नहीं है। और इस बार जो लोग हैं उनको एक बार एक इक्का चतुर्प का इक्का काम करता है, हर बार नहीं करता है, तो वो सारी चीजें नहीं है। हाँ, प्रशासनिक अमले का जो इस्तेमाल है वो होना है, वो होगा, लेकिन राहुल गांधी उससे नहीं हारने वाले। स्मृति ईरानी की जो छवि बनी अब वो घर बना करके चाहे उसमें पूजा पाठ करें, चाहे दो दो वहां से हाईवे निकलवा लें, इस बार मुझे लगता है कि वो दिल्ली नहीं पहुंच रही अमेठी।
वरिष्ठ पत्रकार केपी मल्लिक का कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुकाबले का माहौल बना दिया है और अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतरीन मौका होगा।
सारा परसेप्शन का मामला है, अगर राहुल गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो बहुत अच्छा मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा कि वो डर के भाग गए। और यहाँ हमें ये भी देखना होगा कि 2019 वाले न राहुल गांधी है न स्मृति ईरानी है, अब जुमलेबाजी करने के लिए बचा नहीं है स्मृति ईरानी के पास, अगर वो पिछले हफ्ते घर बना के वहां पे हवन करके बता रही है कि मैं अब मैं यहीं रहूंगी, तो वो नहीं है। दूसरी चीज मुकेश जी, बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 98-99 के इलेक्शन में बाई इलेक्शन अजीत सिंह हार गए थे सोमपाल शास्त्री से, जबकि सोमपाल शास्त्री अच्छे विद्वान और बहुत अच्छे नेता रहे, मंत्री भी बाद में बने, और एक साल के बाद ही लाखों वोटों से उन लोगों ने हराया था और एक किसान ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने ये कहा था कि चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह को हरा के हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और हमें जो है बरगलाया गया। एक साल में इतना परिवर्तन, तो वो परिवर्तन जैसे कि शीतल जी ने भी कहा कि राजीव गांधी का वहां पे इतना असर है कि उनको लगता है कि हमसे अपराध हो गया है, तो उस अपराध को सुधारने के लिए जो आम आदमी है वो है, उसकी भावनाएं आप तक पहुंच नहीं रही है, वो कहीं सोशल मीडिया पे है ना मेन मीडिया पे है, तो वो तो कमाल अपना चुनाव में ही दिखाएगा। दूसरा ये है, अगर आप प्रियंका गांधी की बात करते हैं, सोनिया गांधी ने सीटें खाली की है और उस पर प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती है तो भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, और इसमें एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि मायावती जी आने वाले टाइम में जो गठबंधन करेंगी वो उनकी मजबूरी होगा, क्योंकि 21-20% जो दलित का वोट है उत्तर प्रदेश में वो उनका खिसकते खिसकते 12-14 पे पहुंच गई है और इस बार वो 1-1.5 पे रह जाएंगी, तो वो भी नहीं चाहेंगे सुसाइड करना, तो अगर वो साथ में नहीं आएंगी गठबंधन के तो उनका तो सुसाइड होना ही है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा मिलेगा। तो हमें ये उम्मीद है अगर ये गठबंधन मायावती का बनेगा तो दोनों सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। अब इसके अलावा अगर आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जाने की, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पिछले दिनों राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है और जिस तरह से एकाएक जयंत चौधरी के सुर बदले हैं, वो किसान क्या शांत बैठ जाएंगे कि 750 जो किसान मरे थे आज उसको सही ठहराना तुले हुए जयंत चौधरी? तो यूपी में अभी एक डिफरेंट परसेप्शन बन रहा है, वो पहुंच नहीं रहा हम तक, क्योंकि मेन मीडिया बात करता नहीं है और गांव के लोगों की भावनाएं हम तक नहीं पहुंच रही है। हमें ये लगता है कि चीजों में तब्दीली आई है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
Thank you.